मधुपुर्या केशवः भार्द्रम् च अवदेत् कंसम् मातुः अद्धाः आततर्हणम् व्रजेव सन् किमकरोन् व्रजेव सन् किमकरो मधुपुर्यां च केशवः मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरञ्चावधीतं सम् भ्रातरं चावधीतं सम् मातुरद्धात् अद्दादर्हणम् मातुरद्दादर्हणम् व्रजेव सन् किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीतं सम् मातुरद्धातर्हणम् कथं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीतं सम् मातुरद्धातर्हणम् भजेव सं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः मातरं सावधीतं सम् तदेव सं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशव मातरं चावधीतं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः कंसम् अर्हणम् भजेव सं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशव मातरं चावधीतं सम् अर्हणम् भजेव सं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः मातरं चावधीतं सम् मातरं मातरम् भजेव सं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशवः मातरं चावधीतं सम् मातरं वातहरणम् भजेव सं किम् अकरोन् मधुपुर्यां च केशव मावधीतं सम् मातुर्यातदर्हणम् शब्दार्थ इस प्रकार है, ब्रजे वृंदावन में वसन रहते हुए किम अकरोत, उन्होंने क्या किया, मधुपुर्याम मथुरा में च तथा केशव केशी के संहार करने वाले कृष्ण ने प्रातरम भाई च तथा अवधीत मारा कंसम, कंस को मातुः अपनी माता के अधात प्रत्यक्ष आतत अर्हणम, शास्त्र जिनकी अनुमति नहीं देते। अनुवाद तात्पर्य जो इंग्लिश ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगत जगह रहते थे, वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसा वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते। तात्पर्य, माता का बाद पिता के तुल्य, माता का पद पिता के तुल्य होता है। माता के संतान होने पर, माता का संतान ना होने पर बांछी उसकी संपत्ति का वैद्य उत्तराधिकारी बनता है। बांझा ही उसकी संपत्ति का वैद्य उत्तराधिकारी होता है। तो फिर कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा, महाराज परीक्षित को ये बातें जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। मम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाभे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् साधा कृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते दत्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध चल रहा है, इसका पहला अध्याय। अभी का जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है, इसके अंदर परीक्षित महाराज के 6 प्रश्न हैं। परीक्षित महाराज ने 4 कारण बताए क्यों मैं कृष्ण के बारे में क्यों सुनना चाहता हूं। उसके बाद में उन्होंने क्या सुनना चाहता हूं, ये 6 प्रश्न पूछे। 4 श्लोकों में 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न था बलराम जी के विषय में, रोहिण्य स्तने प्रोक्त राम संकर्षया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। मैं ये जानना चाहता हूँ बलराम जी, उनका ये देहांतर हुआ, ये देहांतर के बिना गर्भांतर हुआ। एक बच्चा जब माँ के जन्म में, माँ के घर में जन्म लेता है तो वो दूसरी माँ के गर्भ में तभी जाता है जब वो देह को त्याग करके दूसरा देह को धारण करता है। लेकिन बलराम जी का ऐसा अद्भुत लीला है कि वो उसी शरीर में एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश किए। ये परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न था, ये मैं जानना चाहता हूँ बलराम जी के विषय में। कल के श्लोक में, नौवा श्लोक में दो प्रश्न पूछे गए, कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगया ध्वजम गतःवासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वताम अधि। कृष्ण अपना पितृ गेहा, जैसे उनके जन्म, उनके पिता के घर में जन्म लिए, यानी वसुदेव के घर में जन्म लिए, यानी मथुरा में जैसे जन्म लिए, मथुरा से वो व्रज क्यों गए, व्रजम गता, यानी मैं ये कारण सुनना चाहता हूँ कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण व्रज जाने का, गोकुल जाने का कारण क्या था। बाद में उनका ये प्रश्न था कि कृष्ण गोकुल से वो वृंदावन यानी नंदगांव क्यों गए और उधर उन्होंने क्या लीलाएं की, ये उनका तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न ये था कि कृष्ण नंदगांव छोड़ के अभी मथुरा क्यों आए और मथुरा में उन्होंने क्या किया, ये आज का प्रसंग है। इसलिए कहा गया है व्रजे वसन किम अकरोन, किम अकरोन ने क्या किया, व्रजे वसन किम अकरोन, व्रज में नंदगांव में क्या किया और उन्होंने उनको छोड़ के मधुपुरियां से केशव, मधुपुरी व्रज को छोड़ के मधुपुरी में आके उन्होंने क्या किया। वैसे परीक्षित महाराज को मालूम था कि मधुपुरी में आके उन्होंने क्या किया, कंस को वध किया, तो उनका प्रश्न यह था कंस को वध करना नहीं चाहिए था कृष्ण को, क्योंकि कंस जो है उनकी माँ का भाई है, माँ का भाई होने के नाते पिता के समान होता है और उनको मारना ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो कृष्ण ने कंस क्यों क्यों मारा, व्हाई डिड कृष्ण किल कंस। बाद में उनका अंत में प्रश्न ये था कि भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका गए और द्वारका में क्या क्या किए, यानी बाल में कितने पत्नियों से विवाह किया, कितने बच्चे हुए, यानी द्वारका लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं। बाद में परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि मैंने जितने भी प्रश्न पूछे उन सबका भी जवाब दीजिएगा और साथ साथ में जो मैं प्रश्न नहीं पूछा उसके बारे में बता दीजिए, यानी सातवां अल्टीमेट प्रश्न था उनका। क्या था कि जो जिसके बारे में मैंने पूछा है उनके बारे में बताइए और जिनके बारे में मैंने ही पूछा है उनके बारे में बताइए। यानी इसके द्वारा परीक्षित महाराज को कृष्ण के बारे में सुनने की जो उत्सुकता है वो इधर प्रकाश होता है। वैसे नहीं कि सुनने की उत्सुकता जो है हम बैठे हैं ठीक है कृष्ण के बारे में सुनाइए, पूछेंगे क्या सुनाऊं, कुछ भी सुनाइए, इसका अर्थ क्या है, उत्साह नहीं है, ऐसे टाइम पास करने के लिए बैठे। प्रश्न जो है बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, मैं इनके बारे में ये चीजें सुनना चाहता हूँ। ये सब कहने के बाद और भी कुछ इसके बारे में कहना है वो भी सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए परीक्षित महाराज ने ये छह प्रश्न पूछे, ये छह प्रश्न में सब कवर हो जाता है, कृष्ण का जन्म लीला, कृष्ण का बलराम जी के विषय में, कृष्ण का जन्म लीला और मथुरा क्यों गए, मथुरा से वृंदावन क्यों, गोकुल क्यों गए, गोकुल की लीलाएं, बाद में वृंदावन व्रज यानी नंदगांव में होके कृष्ण क्या लीला किया, बाद में मथुरा की लीलाएं यानी कंस को वध करने की लीला और अंततः कृष्ण का जो द्वारका लीला, यानी कृष्ण के जितने भी लीलाएं वो सब लीलाओं को मैं श्रवण करना चाहता हूँ। और साथ साथ में अगर मेरे प्रश्नों पूछने में कोई कमी रह गई, कोई टूटी रह गई, इसलिए आप उन प्रश्नों का भी जवाब दीजिए जिनको मैंने नहीं पूछा। तो आज का प्रसंग इस प्रकार है, व्रजे वसन की मकरोन मधुपुर्याम च केशवा। मधुपुर्याम, मधुपुरी का अर्थ है मथुरा। मथुरा बहुत कृष्ण का जन्म स्थली है, लेकिन शास्त्रों में पुराणों में उनका वर्णन बहुत उसका महिमा को वर्णन किया गया है। श्री रूप गोस्वामी स्वयं मथुरा महात्म्य का वर्णन करते हैं, उसकी पूरा बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। आज वराह द्वादशी भी है, तो मथुरा में दो वराह के विग्रह है, एक है लाल वराह, एक है सफेद वराह। लाल वराह का अर्थ है कि उनको काला वराह भी बोला जाता है या आदि वराह भी बोला जाता है। दूसरा है श्वेत वराह। ये दो वराह के विग्रह है। भगवान वराहदेव ने मथुरा में रहने का निवास, उन्होंने सोचा कि मैं मथुरा में निवास करूंगा। अनेकों जगह भ्रमण करते करते एक खास करके ये जो आदि वराह विग्रह है वो आके पहुंचा मथुरा में और इधर निवास करते हैं। वैसे और एक वराहदेव है, वो निश्चित रूप में तिरुपति में निवास करते हैं। तो वराहदेव के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अंत में। लेकिन मधुपुर्याम च केशव रातरम चावदित कंसम मातु अर्धाधरणम। तो शास्त्र के विरुद्ध है, माँ की भाई को मारना पिता को मारने के बराबर है। पितृहत्या, पितरों की यानी पितरों की हत्या करना, पिता का हत्या करना उनके बराबर है। कृष्ण ने क्यों किया? परीक्षित महाराज के मन में ऐसा था कि कृष्ण जो है वो सबको उद्धार तो करते हैं, भले कितना भी क्रूर भी क्यों ना हो कंस, कृष्ण को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ही शुड हैव नॉट डन दैट। तो उनके मन में इस प्रकार का विचार था। वैसे अगर देखा जाए चार कारण थे मैं क्यों कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंतर्बहिष्य, जो अंतरकार थे उनके अंतरंगिक संगियों को, यानी कृष्ण के जितने भी अंतरंगिक संगी भक्त है उनको भी उद्धार करते हैं, और बहिष्य करते उनके बहिर्मुख है, असुर है, उनको भी उद्धार करते हैं। पुरुष काल रूप ही, कैसे काल रूप ही, काल शक्ति के द्वारा कृष्ण असुरों को उद्धार करते हैं, और वही कृष्ण स्वयं अपने प्रेम के द्वारा भक्तों को उद्धार करते हैं। तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कृष्ण के बारे में, इसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि इस जगत में हमने देखा अगर कोई व्यक्ति है, अगर उससे कोई व्यक्ति द्वेष करता है तो निश्चित रूप में वो भी उनसे द्वेष करता है। वो उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी उसके साथ करूंगा, ऐसा टिट फॉर टैट बोलते हैं। तो गेंद का जवाब पत्थर से, ऐसा ये जगत में ऐसा देखा गया है। कितना भी अच्छा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति उससे द्वेष करता है, गलत करता है, उनके मन में तो कम से कम आता है इसको मारूंगा मैं, भले अगर मन में भी नहीं आते जैसे दूर चले जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि मैं उनको उद्धार करूंगा, उनका हित नहीं सोचता है। हो सकता है वो सोचे कि जैसे इनके साथ कुछ लेना देना ही नहीं करके वो सोचे चले जाता है। मैक्सिमम इतना हद तक कर सकता है कोई व्यक्ति, उसको अच्छा व्यक्ति बोला जाता है। लेकिन कृष्ण की अच्छाई का कोई सीमा नहीं है। हाँ, इतने असुर आए और उनको कृष्ण को मारने के लिए आए, लेकिन फिर भी कृष्ण ने क्या किया, उनको उद्धार किया। तो निश्चित रूप में ये जो गुण है कृष्ण में, ये विशेष रूप में मुझे आकर्षित कर रहा है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। फिर भी तुरंत उनके मन में ये बात आया, अरे कंस को उद्धार कर सका था, कंस को उद्धार कर सकते थे कृष्ण, बिना मारे भी कर सकते हैं, उनको क्यों मारे। आचार्यगण कहते हैं परीक्षित महाराज के मन में ऐसा उनको प्रश्न आया कि कृष्ण को, कंस को तो मारना नहीं चाहिए था, भले ही बहुत सारे असुरों को उन्होंने मारा लेकिन कंस को तो मारना नहीं चाहिए था, ऐसा उनके मन में विचार आया। अस्तित्व में भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो सबको उद्धार करने के लिए करते हैं। खास करके कृष्ण का जो मथुरा की जो लीला है, यानी व्रज लीला करके मथुरा में जाने की जो लीला है, ये बहुत विशेष लीला है। इन लीलाओं में कृष्ण ने अनेकों जो असुर है जो वृंदावन में आए थे तो उनको उद्धार किया, लेकिन वृंदावन से बाहर भी यानी व्रज के बाहर भी अनेकों अनेक असुर थे, उनको भी मारना था, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली असुर थे। इससे कृष्ण ने क्या सोचा कि अभी मुझे व्रज छोड़ के जाना होगा और उन असुरों को वध करना होगा, और अनेकों अनेकों भक्त है जो व्रज में अभी तक आए नहीं है, व्रज में आने का उनका योग्यता नहीं है, तो उनको उद्धार करने के लिए कृष्ण क्या किए, मथुरा गमन किए। खास करके ये जो मथुरा गमन की जो लीला है, अनेकों अनेकों आचार्यों ने भागवत में भी अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन किया है, किस प्रकार कृष्ण को अक्रूर लेके जाते हैं और उस समय गोपियों का जो विरह है, यानी भक्ति का सर्वोच्च उत्कृष्टता गोपियों ने जो दिखाया, अपने प्राण को भी वो सोचे कि बस अब त्याग कर देंगे, क्या फायदा जीने के कृष्ण के बिना, ये जो भवान विरह है उसको भगवान ने प्रकाशित किया। इससे पता लगता है कि परीक्षित महाराज, ये जो कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा क्यों गए, और ये प्रश्न के पीछे परीक्षित महाराज में केवल उतना ही उत्सुकता नहीं थी कि हम इसके क्यों कैसे वध किया, क्यों वध किया, इतना ही उत्सुकता नहीं था, बल्कि आचार्यगण कहते हैं परीक्षित महाराज के मन में ये खुलेआम पूछ नहीं पा रहे थे, लेकिन मथुरा गमन की जो लीला है उसको विशेष करके श्रवण करना चाहते हैं। वैसे तो पूरा दसवां स्कंद इन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब है, तो इसलिए भक्तों को खास करके ये जो दसवां स्कंद के पहले अध्याय के जो प्रारंभिक जो श्लोक है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। भागवतम का आशीर्वाद पहला स्कंद के जो पहला अध्याय नैमिषारण्य की ऋषियों का प्रश्न है। ये नैमिषारण्य की ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, वो भी कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न थे। अब इधर भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से दसवां स्कंद के पहले अध्याय पूछते हैं, वो भी कितने हैं, 6 प्रश्न। पता नहीं, ऐसा लगता है कि सबको 6 प्रश्न पूछने चाहिए, 6 क्वेश्चंस। तो उनका जवाब पूरा भागवतम है। एनी हो, ये दसवां अध्याय का या दसवां श्लोक का सार है। अभी वराहदेव के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वराहदेव क्योंकि इधर मथुरा का भी चल रहा है, शास्त्र के अनुसार वराहदेव के 3 रूप है, या पंचरात्रिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार एक होता है आदि वराह, दूसरा होता है श्वेत वराह, और या श्वेत वराह आदि वराह या रक्त वराह, ये दोनों एक ही है, और दूसरा होता है श्वेत वराह, सफेद रंग के वराह देव है, और तीसरे वराह देव है वो यज्ञ वराह। ये 3 विशिष्ट रूप में भगवान प्रकट होते हैं, 3 रूप है वराहदेव के। वराहदेव जो है एक बार स्वयंभू वन मंत्र में प्रकट हुए और एक बार चक्षुष मन मंत्र में प्रकट हुए, यानी 2 बार प्रकट हुए, और तीसरी बार तीसरा वराह जो है वो नित्य रूप में इस पृथ्वी में निवास करते हैं, यानी उनका प्राकृत्य से पहले से ही वो इस रूप में विग्रह के रूप में इधर पृथ्वी में निवास करते हैं। एक बार जो वराहदेव प्रकट हुए थे वो केवल पृथ्वी को उद्धार किए, जब दूसरी बार वराहदेव प्रकट हुए तब उन्होंने हिरण्याक्ष वध किया, क्योंकि स्वयंभू वन मंत्र के समय जब वराहदेव प्रकट हुए उस समय हिरण्याक्ष का जन्म नहीं हुआ था। हिरण्याक्ष का जन्म जो है चाक्षुष मन मंत्र में, उनका हिरण्याक्ष का या आदि उनका सब अदिति अदिति कश्यप उनका लीला चाक्षुष मन मंत्र में हुआ। इसलिए जब तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में जब विदुर मैत्रेय संवाद में ये चल रहा था, उस समय विदुर मैत्रेय से पूछते हैं, मैं भगवान के बारे में और सुनना चाहता हूँ, बताइए, और उसके बारे में चर्चा करते करते जब मनवंतर की बारे में चर्चा होने लगी मनु के बारे में, तब मनु ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मा जी को कहा ने आपने आदेश दिया मुझे, क्योंकि ब्रह्मा जी और मनु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, आप सारे मनुष्यों के राजा होने के नाते सारे मनुष्यों की सृष्टि करो और उनको अच्छे से पालन करो। तब मनु ने पूछा ब्रह्मा जी से, मैं आपकी आज्ञा जरूर पालन करूंगा, लेकिन मैं जिनको सृष्टि करूंगा उनको मैं कहाँ रखूंगा। तब ब्रह्मा जी ने देखा आप इस पृथ्वी के ऊपर रखिए, ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो है ही नहीं उधर, तो पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर के नीचे गिर पड़ा था, तो कोई कारण की वजह से गिर पड़ा था, लेकिन उस समय तो हिरण्याक्ष नहीं था, हिरण्याक्ष ने वो पृथ्वी को निकाल के नीचे नहीं फेंका था। तब ब्रह्मा जी ने कहा रे ये तो नीचे करके अभी क्या करें। ब्रह्मा भी मोहित हो गए। अस्ते प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति जो सारा सृष्टि भी किए हैं, कभी कभी उनकी जो सेवा होती है भगवान की सेवा, ये जो सृष्टि करना ब्रह्मा जी की सेवा है कृष्ण के लिए, वो सेवा में विचलित हो जाते हैं ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बस की बात नहीं है, चलो भगवान से पूछते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये काम जो है मेरी बस की बात नहीं है, भगवान ही कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं। तो जब प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं उसमें भी विमोहित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि असंभव है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस समय क्या करना चाहिए, कृष्ण का शरण लेना चाहिए। असत में जब कोई सेवा करता है, प्रभुपाद लिखते हैं द डिफिकल्टीज, ये जो कन्फ्यूजन जो आते हैं, ये एक मौका है भक्तों के लिए कृष्ण का शरण लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार विचलित हो गए तो कृष्ण का शरण लिया, सोचने लगे हे भगवान आप ही कर सकते हो। तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी के नाक से एक रूप प्रकट हुआ, एक वराह का रूप प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी और आश्चर्यचकित, अरे ये कौन है, ये क्या अद्भुत रूप है। और सब ब्रह्मा जी के साथ में अनेकों उनके अनुच्छेद है, सत्यलोक के निवासी और तपलोक जनलोक महरलोक के तीनों निवासी थे, और ये सब ऋषि थे, और ब्रह्मलोक के निवासी जो है वो अलग कैटेगरी के। तो ये सब ये रूप को देख के एकदम आश्चर्यचकित हुए, और ये जो वराह रूप है तो क्या करने लगा, और बड़ा सा रूप धारण करने लगा, और धारण करके वो जैसे कोई सुअर होता है, वराह होता है, जब कोई का एक नाले से निकलता है वो क्या करता है, शरीर को ऐसे ऐसे करता है, ठीक नहीं। तो भगवान ने ऐसा करने लगा, उनके शरीर से जो जल है वो क्या हुआ, सब ऋषियों के ऊपर गिर पड़ा। तो ऋषि लोग अपने आप को पवित्र मानने लगे। अब देखिए अगर कोई सुअर, साधारण सुअर अपने शरीर को हिलाता है तो उससे अगर जल आता है तो हम लोग देखिए क्या हो गया, चलो नहाना पड़ेगा। भगवान के शरीर से उत्पन्न जल है वो जैसे गिर पड़ा ऋषियों के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर, आपको बहुत पवित्र मानने लगे। तो जैसे भगवान का रूप प्रकट हुआ तो क्या करने लगे, सा ब्रह्मा जी और अन्य जितने भी ऋषि है वो सब स्तुति करने लगे, खास करके स्तुति करने लगे, हे भगवान आप जो है सारे वेद आपके चमड़ी के बराबर है, यानी आपके शरीर से सारे वेद उत्पन्न हुआ है, आप यज्ञ के ईश्वर हो। तो ये वराह जो रूप है खास करके यज्ञेश्वर माना जाता है, यज्ञेश्वर का अर्थ है जितने भी यज्ञ इत्यादि होते हैं वो सब भगवान जो है यज्ञ या यज्ञ वराह के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे स्वयं श्री कृष्ण तो अनेकों अनेकों लीलाओं करने में बहुत बिजी है कि नहीं, लेकिन वराह देव एक बार लीला करके शांति से बैठते हैं कि नहीं, इज जस्ट सिटिंग। अभी अरण्याक्ष के बाद हो गया, पृथ्वी को स्थापन किया, उसके बाद करेंगे क्या, तो बैठे ही इज जस्ट सिटिंग। कैसे बैठे हैं, सारे पृथ्वी के पति के रूप में बैठे हैं, खास करके तिरुपति में जो ये भक्त गए होंगे उधर वो वराह स्वामी का विग्रह है। ऐसा कहा जाता है भगवान ने क्या किया, ये वराह देव के रूप में प्रकट होके हिरण्याक्ष वध करके वो क्या किए, वो तिरुपति में जाके बैठ गए, इसलिए तिरुपति को वराह क्षेत्र कहा जाता है। केवल तिरुपति नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है उसको दो लोगों के बीच में विभाजन किया गया है, एक वराह देव दूसरा है शिवजी, शिवजी का थोड़ा सा पार्ट है और वराह देव का थोड़ा पार्ट है। इसलिए आप कहीं भी कुछ भी जाते हो या शिवजी का निवास स्थान रहता है उसका क्षेत्र अधिपति होते हैं, क्या वराह देव उस क्षेत्र के अधिपति होते हैं। स्वयं भी भगवान को ही प्रकट होना पड़ता है, अगर उनको कहीं निवास करना है तो इन दोनों में किसी न किसी को परमिशन लेना पड़ता है। जब तिरुपति बालाजी स्वयं प्रकट हुए तब उन्होंने क्या किया, तो वराह देव के पास जाके उन्होंने भिक्षा मांगा, देखो थोड़ा सा मुझे रहने का स्थान दो। तो वराह देव ने कहा मैं दे देता हूँ लेकिन एक कंडीशन पर, जितने भी लोग आएंगे आपका दर्शन करने के लिए सबसे पहला मेरे पास आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हाँ, जो भी आपको अर्पण करेंगे सबसे पहला मुझे थोड़ा अर्पण करके बाद में बाकी सब आपका है। तो तिरुपति बालाजी ने कहा ठीक है चलो। श्रीनिवास ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, इससे बालाजी का दर्शन अभी पूर्ण होगा जब पहला वराहदेव का दर्शन करेंगे। तो इधर ब्रह्मा जी इत्यादि सब स्तुति करने लगे, और जैसे स्तुति करने लगे आप ही यज्ञ के भोक्ता हो, आपने आप ही यज्ञ के अधिष्ठात देव हो, सारे वेद आपसे उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे सुंदर स्तुतियों जैसे करने लगे। तो वराहदेव ने क्या किया, वो गर्जना किया, हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारी स्तुतियों के द्वारा। तो सारे जितने भी देवता और ब्रह्मा जी ऋषिगण प्रार्थना करने लगे, और वराहदेव का गर्जना कैसे थी, वो वैदिक स्तुतियां थी। तो इस प्रकार वराहदेव ने क्या किया, सारे ऋषि खास करके ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान की स्थापना किया। और जैसे वराहदेव एक बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में उनका शरीर विस्तार हो गया था, और नीचे कूदे, और जैसे कूदे जिस प्रकार एक हाथी जो है गजेंद्र बड़े बड़े सागर में जिस प्रकार वो रमण करने जाते हैं, उसी प्रकार वराहदेव ने क्या किया, अपने आगे के जो दो पैर है उसको आगे करके समुन्द्र को उन्होंने फाड़ दिया। गर्भोदक सागर एकदम ओ भगवान रक्षा करो मुझे फाड़ो मत, ऐसा उन्होंने सागर भी इस प्रकार घोषणा करने लगे। तो वराहदेव एकदम नीचे की ओर गए, जैसे नीचे की ओर गए उधर पृथ्वी दिखा, पृथ्वी को क्या किया ना, शशिनी कलंक कलेव निमग्न, जैसे शशिनी चंद्रमा जिस प्रकार चमकता है उसी प्रकार वो एक आभूषण के रूप में धारण किए वराहदेव। वराहदेव का जो टस्क होता है उसके ऊपर वो पृथ्वी को लिए, उसको ऐसा जो कोई बॉल समझ लीजिए उसको कोई ऐसा उठा के लेके आता है, उसी प्रकार भगवान उठा के लेके आते। तो वो श्लोक का वर्णन में हुआ हिरण्याक्ष क्रोध आया, तो भगवान ने क्या किया हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके हिरण्याक्ष को मार दिया। लेकिन दो जो वराह अवतार की जो लीलाएं हैं उनको एक ही साथ वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है ये एक बार अलग वराह हुआ दूसरा हुआ, दो अलग से नहीं कहे, तो दोनों एक ही साथ ने मर्ज करके उसको वर्णन कर दिया। तो जैसे वराहदेव पृथ्वी को ऊपर उठाए, उठाने के बाद पृथ्वी को यथास्थान स्थान में रखे, और वराहदेव जो है तिरुपति में आके निवास करने लगे। तो वराहदेव का ये भी अद्भुत लीला है, वृंदावन परिक्रमा करने जाएंगे तो आप वराह घाट एक आता है, वराह घाट जो है आपको उधर वराहदेव का भी मंदिर है, लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे उठता नहीं हूँ, परिक्रमा करते सुबह के टाइम परिक्रमा करते हैं। उधर राधा कृष्ण अन्य गोपियां का भी मंदिर है और साथ साथ में वराहदेव का मंदिर है। एक बार कृष्ण लीला में ऐसा हुआ कि कृष्ण अनेक गोपियों के साथ लीला कर रहे थे उस जगह पे, अचानक कृष्ण गायब हो गए और सारे गोपियां ढूंढने लगी कृष्ण को, कहां हो करके। और उधर श्रीमती राधा रानी आई और सब लोग ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो कृष्ण क्या किया, एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और उधर से वो ने सोचा थोड़ा सा इनके साथ एक अद्भुत लीला करूंगा करके वो वराह का रूप धारण करके आए, शंख चक्र बदा पद बता, इतना बड़ा सा रूप वराह का रूप दिखाए। और सारे गोपियों देख के डर गई, अरे ये क्या है, और उनको मालूम पड़ा यही कृष्ण है। राधा रानी ने कहा नहीं 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 ये रूप जो है इस रूप में हमको आपको नहीं देखना है, आप जैसे हमारे साथ हमारा दिल को मोह लिए थे वही रूप में हमको दर्शन दीजिए। तब कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का बात सुन के वराह रूप से उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया। इसलिए जहाँ गोपियों को भगवान ने वराह का रूप दर्शन कराया उस जगह को वराह घाट कहा जाता है। तो कृष्ण और वराह के बीच में, या कृष्ण ऐसे दोनों तो एक ही स्वरूप है फिर भी बड़ा विशेष संबंध है। हाँ, जैसे मथुरा में दो वराह रूप है, कृष्ण का जन्म स्थान वराह घाट है। और दूसरी बात यह है जब वराहदेव पृथ्वी को उठाए तो उस समय पृथ्वी माँ भूदेवी को गर्भवती किया, उन्होंने युवेद भूदेवी को गर्भ प्रदान किया, तो उसकी वजह से नरकासुर का उत्पत्ति हुआ। तब भूदेवी भगवान से प्रार्थना करती है कि आप जो है ये आपका पुत्र है, आप उनको कभी मत मारिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये असुर बनने वाला है गलत संगति की वजह से। बाद में ऐसा हुआ कृष्ण के समय या कृष्ण लीलाओं के समय नरकासुर बड़ा उत्पात मचा रहा था, ये नरकासुर को वध करना था कृष्ण को, और कृष्ण ने वादा किया था भूदेवी को, मैं आपका पुत्र को वध नहीं करूंगा, मैं क्या करें। तो इसलिए पुराणों में दो प्रकार की स्टोरी है, एक जगह ऐसा वर्णन है कि कृष्ण वाला नरकासुर से युद्ध करने गए सत्यभामा के साथ, सत्यभामा जो है भूदेवी का विस्तार है। तो एक पुराण में ऐसा वर्णन है कि नरकासुर युद्ध करते करते कृष्ण थक गए और बेहोश हो गए, नरकासुर इतना तीव्रता से युद्ध कर रहा था, तब कृष्ण ऐसा बेहोश हो गए, तुरंत सत्यभामा ने क्या किया, धनुष बाण लेकर नरकासुर को वध कर दिया। और दूसरी जगह है बहुत युद्ध तीव्रता से चल रहा था और सत्यभामा ने कहा कृष्ण को अभी उसको मारो, तो कृष्ण नरकासुर को वध कर दिया। यानी दोनों जगह अलग अलग स्टोरी है, एक जगह तो सत्यभामा ने स्वयं मारी नरकासुर को, दूसरा जगह है पहले तो वचन दिया था कृष्ण नरकासुर नहीं मारूंगा करके, लेकिन सत्यभामा का वापस होने का आदेश था, भूदेवी स्वयं है तो उसकी वजह से कृष्ण ने उनको मारा। तो इसलिए वराहदेव जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देव है। वराहदेव वराह गायत्री में वराह मंत्रों में खास करके वराहदेव की उपासना इस प्रकार की गई है कि यज्ञेश्वर के विषय में, यानी कोई भी चीज जो भगवान को अर्पण करते हैं यज्ञ के रूप में इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस, भगवान जो है वराह और देव के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, ही एक्सेप्ट थिंग्स एज वराह। इसलिए कोई भी चीज धारण करना होता है उधर कच्चे रूप यानी टॉर्टॉइस का रूप जो है भगवान का मत्स्य कूर्मा कूर्मा कूर्म रूप में भगवान को स्थापना करते हैं, कूर्म रूप कूर्म का आवाहन करके उसके ऊपर हर चीज का रखना, कोई भी यज्ञ कुंड बनाना सब कुछ रहता है। जब वराहदेव की बात आती है तो यज्ञेश्वर के रूप में उनको उपासना की जाता है, यज्ञ में कोई भी आहुति डाला जाता है वो कृष्ण स्वीकार करते, किस रूप में स्वीकार करते हैं वो वराह के रूप में आके स्वीकार करते हैं। भगवीता में भगवान कहते हैं यत् करोषि यज्जोषि तृष्णाषि तपस्सि कौन्तेय तत्कृष्वा मदर्पणम्। जब अर्पण करते हैं कृष्ण तो बहुत बिजी है उनके उनके लीलाओं में है कि नहीं, हाँ तो वो आके कैसे ग्रहण करेंगे, वो करेंगे वराह के रूप में, क्योंकि वराह का लीला तो फास्ट हो गया है अभी कहाँ कर रहे हैं, लक्ष्मी को धारण किए हुए भूदेवी को धारण किए हैं और शांति से बैठे हैं ताकि सारे जीवों की जितने भी यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से क्या व्हाट इज दैट यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मवंदना तदत्तम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, उन सारे लोगों की यज्ञ की जो ये है वो स्वीकार कर दी एक्सेप्ट। तो आज वराह द्वादशी है, हमें भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए वराहदेव से कि वो यज्ञेश्वर होने के नाते तो हमारी जो कार्य है उनके प्रसन्नता के लिए किया गया उसको भी स्वीकार करें। हरे कृष्ण। यस वराहदेव को उपासना करते हैं क्या वराह के जैसा शरीर मिलता है क्या, उनको प्रश्न ये है पहला वराहदेव का भी भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए, जो पहली बार प्रकट हुए स्वयं मनवंतर में वो आधा मनुष्य था उनका वराह था जो आदि वराह है, बाद में श्वेत वराह, इसलिए जो श्वेत वराह कल्पे कहा जाता है इसको, ये कल्प को श्वेत वराह कल्प कहा जाता है कि श्वेत वराह कल्प जो है वो स्पेशल है। सफेद रंग स्पेशली प्रकट होती है, हिरण्याक्ष को जो वध किया वो श्वेत वराह है, इससे भगवान श्वेत वराह के रूप में जो प्रकट होने की वजह से श्वेत वराह कल्पे कहा जाता है। ब्रह्मा जी का ये जो कल्प है 51st ईयर फर्स्ट डे ऑफ ब्रह्मा इज नोन एज श्वेत वराह कल्प, उसमें दो वराह है, एक श्वेत वराह एक रक्त वराह, और यज्ञ वराह वो पंचरात्रिक विग्रह है जो क्योंकि भूदेवी के वो पति है, लेकिन और भूमि किसके लिए है, भूमि में लोग जो है अनेकों अनेकों कार्य करते हैं, कर्म भूमि बोला जाता है, कर्म क्षेत्र है, हाँ ये कार्य सारे कर्मों को शुद्ध करने के लिए भगवान नित्य रूप में भूदेवी के साथ रहते हैं, ताकि इस भूदेवी से उत्पन्न या उससे किया गया कार्य को स्वीकार करने के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं वो भूदेवी से उत्पन्न होती है, यानी कोई भी उत्पन्न उत्पत्ति जो भूदेवी से, वो उसके वास्तविक भोक्ता कौन है, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम वराहदेव है, अग्नि जो है भगवान की जिह्वा, यज्ञ कुंड की अग्नि भगवान की जिह्वा है, मैंने ये नहीं कहा कि यज्ञ कुंड के अग्नि जो है वो वराहदेव है, नहीं, उस सारे यज्ञों की भोक्ता जो है कृष्ण है, लेकिन कृष्ण वो किस रूप में यज्ञ को स्वीकार, यज्ञ फलों को स्वीकार करते हैं, वराह के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसलिए यज्ञ वराह कहा जाता है, जो खास करके दक्षिण भारतीय संप्रदाय में जब भी यज्ञ होता है, हवन होता है, तो वो सबसे पहला यज्ञ वराह की प्रतिष्ठा करते कलश में, तब उनका ये होता है, और भी जो वैष्णव विधि हिसाब से करते हैं वो पहले वराह देव को स्थापना करते हैं, क्योंकि इट इज ही वो एक्सेप्ट कृष्णा, ही एक्सेप्ट द सैक्रिफाइस इन द फॉर्म ऑफ वराह, दैट इज एटर्नल डेटी, उनका प्राकट्य करके कुछ होता नहीं है, सृष्टि हुआ तो है, देर एटर्नल डेटी, यज्ञ वराह इज एटर्नल डेटी, और ये श्वेत वराह वो ये पास्ट टाइम डेटीज है, कौन सा रक्त वराह और श्वेत वराह, यानी कि विशेष कार्य के लिए वो प्रकट हुए, हाँ या रक्त वराह यादि वराह दोनों, लेकिन यज्ञ वराह जो है इट इज एटर्नल डेटी, ठीक है, हाँ होगा, एक वैकुंठ होगा, वैकुंठ में कोई निवास करते होंगे, उनका कौन सा शरीर प्राप्त होता है मुझे नहीं मालूम, हमारा भी ऐसा वरारूप शरीर, हाँ वैकुंठ में ऐश्वर्यवान स्वरूप है उनका, स्वरूप वैकुंठ में, हाँ होता होगा वैकुंठ में एक स्वरूप है उनका, अलग लोक तो है, आदिवरा कल्प आदिवरा आदिवरा, हाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वंस मैटरनल अंकल द ब्रदर ऑफ वंस मदर इज ऑन द लेवल ऑफ वंस फादर, तो शास्त्र में पितरों को मारना ये वर्णन नहीं किया गया है, क्यों कृष्ण ने ऐसा क्यों, व्हाई डिड यू डू दैट, तो ये आर्ग्यूमेंट इस प्रकार था, अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपने आप मुझे कहते हो कि भीष्म को मारो द्रोणाचार्य को मारो, लेकिन आपने असुरों को मारा है, लेकिन भीष्म को अपने ग्रैंडफादर को अपने गुरु को नहीं मारा है, तो कृष्ण का ये जवाब था लेकिन मैंने कंस को तो मारा ना, भले ही मेरा संबंधी है लेकिन मैं ये नहीं देखता हूँ मेरे संबंधी है, मैं अपने पुत्र को मारा है, आई किल्ड somebody is demoniac, I don't see. इसलिए हिरण्याक्ष का वध के बाद तुरंत हिरण्यकश्यपु का प्रसंग शुरू होता है सातवां स्कंद में, वो सातवां स्कंद का पहला अध्याय द लॉर्ड इज इक्वल टू वन एंड ऑल, यानी नहीं निहिग्रहणे निग्रहणेन सापेक्षत्वात्, यानी भगवान के लिए ना कोई बंधु है ना कोई मित्र है ना कोई दुश्मन है, ना समोहम सर्वोचु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। तो ये भजन तो माम भक्तिया, तो ये जो श्लोक को सिद्ध करने के लिए भगवान ने एक अंश को उन्होंने वध किया। वैसे परीक्षित महाराज का ये एक प्रकार का आश्चर्य था कि कंस को तो नहीं करना चाहिए था ना, इट वॉज हिज मूड, क्योंकि उनका तो माँ का भाई है, इट वॉज हिज सोन, सुधारने तो सुधार सकते थे। तो इसलिए कंस का जो वध है वो बहुत स्पेशल लीला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम। जब वो पास्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे उस समय और व्यक्त होगा कृष्ण ने कंस को क्यों मारा, वाई वाई ही किल्ड कंसा, बिकॉज जितने भी असुर असुर हैं वो सारे असुरों का असुरत्व कंस के अंदर भरा हुआ था। हाँ वो सब थोड़ा सा पार्ट पार्ट गए, कृष्ण ने सोचा इसको ही मार दूंगा तो ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी खत्म हो जाएगा, और कंस को मारने के बाद और एक जरासंध के विषय में आता है। तो उस समय कृष्ण चाहते थे कि कंस के और भी मित्र हैं, बरसर मित्र हैं, अभी उन लोगों को कंस ने नहीं भेजा था, अभी उनको कैसे मारेंगे, जब युद्ध होगा तभी मारेंगे। लेकिन ये सब बड़े बड़े इतने बड़े थे जरासंध इत्यादि कि वो बच्चे से युद्ध करना चाहिए उठो ऐसा बोलेंगे, इससे क्या फाइटिंग करने का। तो कृष्ण का और एक प्लान था, जरासंध प्रसंग में आता है कि अगर मैं कंस को मारूंगा कि वो भी मुझसे युद्ध करने आएंगे, वो भी मेरे प्रति द्वेष, तब उनको मारने में मुझे आसान रहेगा, फाइटिंग होगा तभी मारेंगे ना, तो फाइटिंग के बिना कैसे मारूंगा, कैसे उनका मृत्यु होगा। तो वैसे बहुत सारे कारण है, देयर सो मेनी अदर रीजंस बिहाइंड कंसस, वो मैं एक्चुअली पता तैयार नहीं किया उसके उसके विषय में, क्योंकि उसके लिए वो वी हैड ओपन सनातन गोस्वामी एक्सप्लेनेशन, वो जरासंध की वध के विषय में सनातन गोस्वामी टीका में सब है, लेकिन वो अभी ढूंढना बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट आर कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।